संतप्त मानस शांत हों, जिनकी गुणों की गान में मान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। निकालो पेज नंबर 75 इस किताब का। वनासी दास के छंदों को पढ़ने की बात आज के लिए अपन ने छोड़ी थी। अब ये दो छंद वनासी दास जी के हैं, इनके बारे में अपन विचार करते हैं। जरा पढ़ो वनासी दास का ये छंद, पेज नंबर 75 पर है ना।
जैसे नाना बरने पूरी बनाई दीजे हेठ, उज्जल विमल मणि सूरज क्रांति है। उज्जलता भासे जब वस्तु को विचार की, पूरी की झलक सोबरन भांति भांति है। तैसे जीव दरब को पुगल निमित रूप, ताकि ममता सो मोह मदिरा की भांति है। भेद ज्ञान दृष्टि सो स्वभाव साधि लीजेता, साची शुद्ध चेतना आवासी सुख शांति है।
इस छंद का अपन अर्थ करें उसके पहले एक पैरा हम और पढ़ लेना चाहते हैं इसके अर्थ से संबंधित। इस छंद का अर्थ समझने के पहले एक बात स्पष्ट कर लेना प्रतीत होता है, आवश्यक प्रतीत होता है कि सूर्य कांति मणि उसे कहते हैं जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर वह गर्म हो जाता है, एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, आग उगलने लगता है और वह स्फटिक मणि वह है जो स्वयं निर्मल स्वच्छ पारदर्शी होता है, किंतु उसमें जिस रंग से दाग लगा देते हैं वह उसी रंग रूप दिखाई देने लगता है। पहले इन दोनों का अंतर समझें, क्या स्फटिक मणि और सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि का अर्थ मैं पहले बता चुका हूं, अभी पढ़ के सुना दिया है, अब तीसरी बार पढ़ करने की जरूरत नहीं है कि सूर्य की किरणों के पड़ने से जो आग उगलने लगे वो सूर्यकांत मणि है। और स्फटिक मणि वो है कि जिसका कोई कलर नहीं होता, इसके बारे में भी बात की थी अपन ने। अपन जो सफेद बोलते हैं वो वास्तव में सफेद नहीं है, क्योंकि सफेद भी एक कलर है और सफेद कलर के पीछे आप हरा कलर लगाओ तो वो हरा नहीं हो जाएगा, सफेद ही रहेगा। लेकिन स्फटिक मणि में जिस चीज की डांक लगाते हैं वो लगाते हैं पीछे से, अभी डांक का अर्थ भी बताऊंगा, वो उस रंग का हो जाता है। हमने ये शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार बहुत स्फटिक मणि देखे, क्योंकि हमें मूर्ति लेनी थी ना स्फटिक मणि की, तो हमें कहीं ऐसा मिले ही नहीं कि हम उसमें ऐसा पीछे से कोई डांक लगाएं तमाल वृक्ष की या उसकी और वो सारा लाल हो जाए। अब पीछे पूरा कागज लगा दो तो उस रंग का दिखने लगता है, तो ये तो पूरा कागज लगाने की बात है, तो कांच में भी होगा ऐसा, घबराना नहीं। तो ऐसा शक होता था हमें कि ये कांच है जो हमें स्फटिक मणि के रूप में बेचा जा रहा है, ख्याल में आई ना। हम तो शास्त्र में वही पढ़ा था और वैसे तो स्फटिक मणि हमने देखा नहीं था, दूर से ही दर्शन किए थे, भगवान के हाथ तो लगा नहीं सकते हैं, हैं? क्यों हमारे दिमाग में संतोष नहीं हो। फिर आकर के जो स्फटिक मणि के विशेषज्ञ हैं आजकल अपनी जैन समाज में, उनने हमें समझाया कि दादा वो ऐसा नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे शास्त्रों में ही मिलेगा, ना सूर्यकांत मणि मिलेगा कोई तुम्हें ऐसा जिसमें आग उगलने लगे, ना चंद्रकांत मणि मिलेगा जिसमें से पानी का झरना झरने लगे, और ना स्फटिक मणि मिलेगा वो डांक वाला, ये तो सब तुम्हारे शास्त्रों में ही होते हैं। نہ وہ ایسا ہیرا ملے گا کہ آپ نے ایسا انگوٹھی ٹچ کر لی ہو موت مر جائے گا. کیوں؟ یہ تو سب شاستروں کی باتیں ہیں. یہ جو پریکٹیکل دیکھو گے تو یہ اصلی ہیرا ہے, یہ اصلی اسفٹک ہے, خیال ہے نا. اور ہمیں ان کی بات ماننی پڑی, سمجھ میں آ گئی. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ شاستروں کی بات ہی میری سمجھ میں آتی ہے. اب یہ جب پنچم کال کے سمے دشٹی بھی الگ ٹائپ کے ہونے لگ گئے ہیں اور پنچم کال کے سب پنچم انوستان بھی الگ ٹائپ کے ہونے لگے ہیں, چھٹویں ساتویں والی الگ ٹائپ کے ہونے لگے ہیں, تو یہ منی بھی ہونے لگے ہوں گے بھیا. لیکن شاستروں میں تتوار سدھانم کہا ہے, کسی ویکتی کے سدھان کو سما درشن نہیں کہا. دیو ساس گرو کا سروپ جو بتایا ہے اس کی سدھا کا نام سما درشن ہے. یہ فلاں ویکتی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ایسا اس میں کوئی شامل نہیں ہے. اس لیے ہمارے سما درشن کے راستے میں کوئی بڑی بادھا نہیں ہے, ہم تو اپنے اسی مارگ پر چلیں گے. اب یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے, اب اس میں دوسری جھنجٹ ہے. دونوں کی پربھاشا تو سمجھ لیا آپ نے ابھی, اس پرتک منی میں ایسا ذرا سا چھید ہو پیچھے اور اس میں وہ ڈاگ لگانا مانے ایک تمال پشپ ہوتا ہے اور ایک جبا پشپ. جبا پشپ لال ہوتا ہے اور تمال پشپ کالا. کالا مانے پورا کالا تو نہیں, لیکن وہ لالیما اور کالیما کے بیچ میں کچھ ہوتا ہے. اب یہ پشپ کی جو کلی ہوتی ہے, کلی جیسی ہوتی ہے نا, ایسا چھید ہم اس کے پیچھے کریں نیچے مورتی کے اور اس میں وہ لگا دیں وہ کلی صرف, تو وہ پوری اسپٹک کی مورتی اسی کلر کی دکھے گی. تمال کا پشپ لگائیں گے تو تمال کے کلر کی دکھے گی اور جبا کا پشپ لگائیں گے تو جبا کی طرح دکھے گی. خیال میں ہے نا, یہ اسپٹک منی کی پریبھاشا ہے. ابھی یہاں بہت بڑا چکر پڑا. اس چھند کا جب ہم نے سمجھا تو نام تو لکھ رہے پھٹک منی, دیکھو نام تو لکھ رہے سورج کرانتی, اور بات لکھ رہے وہ جو اس پھٹک منی پہ ڈانک لگانے کی. پہلے کیا کر رہے, یہ بناسی راجی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں مہن کمار جی؟ اب ایسی مفت کی بات میں ہم ماتھا مارتے رہتے ہیں, باقی لوگوں کو تو فرصت نہیں ہے, سب نے پڑھ لیا ہے سمے ناٹک سمے سات پچیسوں دفعہ, کسی کے دماغ میں یہ پرشن کھڑا نہیں ہوا. اب مجھے تھوڑا تھوڑا لگنے لگ گیا ہے کہ میرے کیا تو کچھ پتا نہیں بڑھاپا آ گیا کہ میں پہلے بھی ایسا تھا کہ ابھی بھی ایسا ہی ہوں. لیکن یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری غلطیوں کو آپ لوگ معاف کر دیں. ابھی آپ لائے دو کتابیں میرے لے کے کرے تھے سامنے, میں نے دیکھا ہی نہیں. ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ ایسی حالت میری کب سے ہو گئی ہے, یہ اچھی ہوئی ہو چاہے بری ہوئی ہو, لیکن جب میں کئی کام میں رہتا ہوں اپنے میں تب مجھے سچ مچ اب ایسا ہوتا ہے. یہ مجھے ابھی پتا لگنا, پہلے بھی ہوتا ہوگا. تو بات ایسی ہے کہ پہلے کوئی میرے پاس کتاب لے کے نہیں آتا تھا, اس لیے مجھے پتا نہیں لگتا تھا. اور آج آتے ہیں آفس میں بھی آتے ہیں تو بیچارے کھڑے رہتے ہیں. تو ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہو گئے تو مجھے معاف کر دینا, میرے اپیوگ میں آپ آ جائیں اور پھر میں کوئی ریئیکشن نہیں دوں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا میرے من میں رنج ماتر بھی نہیں ہے. اب میرے وہ اپیوگ کی خرابی اچھائی جو بھی نام آپ کو دینا ہو دیتے رہنا ہے. لیکن جب آپ اپیوگ نہیں ہوتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے. ابھی میرے گھر والوں سے ایسی بھی شکایت ہونے لگ گئی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے مجھے پتا نہیں ہے, لیکن کچھ ہو ضرور گیا ہے. اب اپنا دیکھو سورج کان کی منی, یدی میں بھی آپ جیسا ہی پڑھتا تو میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی. تو اب چھند پڑھتے ہیں اپن, دیکھو
جیسے نانا برن پوری بنائے دیجے ہیٹ اجول بمل منی سورج
उज्ज्वलता भस जब वस्तु को विचार कीजे पूरी की झलक सो वर्ण भांति भांति है तैसे जीव दरवे को पुगल निमित्त रूप ताकि ममता समूह मंदिरा की भाती है वेद ज्ञान दृष्टि सो स्वभाव साध लीजेता साची शुद्ध चेतना आवाची सुख शांति है।
देखो उसमें लिखा है पूरा से अपन बाद में पढ़ेंगे जो मेरा मतलब की बात बताता हूँ कि जैसे नाना बरन पुरी बनाए जिस प्रकार अनेक रंगों की बरन माने रंगों की पुरी माने पुड़िया पुड़िया बनाकर सूर्यकांत मणि के पीछे लगा दें तो हम सूर्यकांत मणि को स्वभाव से देखेंगे तो वो निर्मल ही दिखाई देगा और पुरी की झलक की देखेंगे तो अनेक रंग का दिखाई देगा। अब इसमें नाम तो लिखा है सूरज क्रांति मणि और बात है स्फटिक मणि की झगड़ा ये है खड़ा हुआ क्रांति जी समझ में आया ना। सोचना मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं जो आपके पढ़ने के बाद भी आपके ध्यान में नहीं आता है वो बात मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। सूरज क्रांति मणि लिखा ना और पुरी की झलक सो बरन भांति भांति है उस पुड़िया की झलक से वो अनेक रंग का दिखता है। अब हमने एक पुड़िया ऐसी बनाई कि इस तरफ से लाल है और इस तरफ से नीली है पीछे से हरी है और आगे से समझो पीली है। अब वो पुड़िया लगाई तो आदि इधर की एक हाथ दिखेगा नीला एक हाथ दिखेगा पीला आगे से देखेंगे लाल पीछे देखेंगे अब समझे ना मूर्ति में ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो नाना बरन पुरी बनाए नाना रंग की पुड़िया बनाकर ऐसे इस आत्मा में एक डांग लगाई तो यहां से रागी दिखता है यहां से देसी दिखता है यहां बच्चों को छाती से लगाता है प्रेम करता दिखता है ना तो वो रागी दिखता है वहां कुत्ते का बच्चा आता है हट हट एक मिनट में देसी दिखने लगता है क्यों वो दिखता है ना इधर से कुत्ता का बच्चा आया इधर से अपना बच्चा आया अब दोनों का वर्णन देगा अब अंदाजा लग गया ना आपको कैसा भगवान आत्मा होता रहता है 24 घंटे तो है कैसा वो रागी के देसी तो वो कहते स्वभाव से देखो तो ना रागी है ना देसी। वो जो मणि है अब कौन सा मणि अभी बिना मणि के मैं जो मणि है ऐसी कह रहा हूं जानबूझ के क्या सूर्यकांत भी नाम नहीं लेना चाहता हूं स्फटिक भी नाम नहीं लेना चाहता हूं उसका तो मैं जब फैसला कर दूंगा तब बात करूंगा। वो मणि यहां से लाल यहां से नीला यहां से पीला दिख रहा है लेकिन ये सब कुछ है ही नहीं वो तो बिल्कुल निर्मल है जिसमें कोई रंग है ही नहीं विदाउट रंग ख्याल में है ना। ऐसे ही भगवान आत्मा में ना राग है ना द्वेष है ना मोह है वो तो पूर्ण वीतराग स्वभावी है। वीतराग शब्द भी कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किसी के अभाव रूप नहीं है वो तो अपने स्वभाव रूप है ना राग द्वेष नहीं है ऐसा वीतराग शब्द का द्वार से है ना। अब पूरा इस बात में कर लेंगे अब अपन इसका फैसला कर लें कि जी क्या करें बनारसी दास की गलती थी क्या थी इसके लिए मैंने बहुत माथा मारा फिर डिक्शनरी देखी सूर्यकांत मणि का अर्थ देखा और उसमें फिर मैंने स्फटिक मणि का अर्थ देखा और जो मैंने आपके सामने लाया हूं वो इस किताब में लिखा है आप पढ़ते नहीं है तो मैं क्या करूं तो पढ़ो पीछा पीछे निकालो इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं बिना पढ़े भी मैं आपको बता सकता हूं लेकिन ये बताने के लिए कि इसमें लिखा है आप जरा पढ़ा कीजिए। अब मैं रोज ही ना कहता हूं ये पेज पढ़ के आना ये पेज पढ़ के आना फिर भी कोई पढ़ के नहीं आया और पढ़ के आया हो उनकी समझ में आ गया हो तो मैं उनके लिए वंदना करता हूं। सुनो यहां इस छंद में नाम तो सूर्यकांत मणि लिखा है और उसमें अनेक रंगों की दाग लगाने की बात लिखी है इससे प्रतीत होता है कि कम से कम बनारसी दास की दृष्टि में सूर्यकांत मणि और स्फटिक मणि एक ही वस्तु है। वो जैसा अपना त्याग धर्म में हुआ ना, उत्तम त्याग कहो जग सारा और औषध शास्त्र अभय आहारा। नाम कह रहे त्याग धर्म की और भेद गुना दिए दान के, इसका मतलब दोनों को वो एक ही मानते हैं, ऐसा लिखता है या नहीं लिखता है। तो ऐसा ही यहां हुआ है, वहां भी मैंने गंभीरता से विचार किया है। पूजा आप रोजाना पढ़ते हो लेकिन आप विचार नहीं करते हो, क्यों? जिसमें उक्त विशेषताएं एक साथ वस्तु है, जिसमें उक्त दोनों विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, शब्द कोश में भी इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, उसमें भी सीधा नहीं मिलेगा आपको। तात्पर्य यह है, संकेत मिलते हैं, संकेत समझने पड़ेंगे। तात्पर्य यह है कि सभी स्फटिक मणि तो सूर्यकांत मणि नहीं होते, परंतु सूर्यकांत मणि भी एक विशेष प्रकार का स्फटिक मणि ही है। सूर्यकांत मणि स्फटिक मणि का भेद है, लेकिन उसको पर्यायवाची नहीं कह सकते। क्यों? कि हर स्फटिक मणि तो सूर्यकांत मणि नहीं होता है, वो चंद्रकांत मणि भी स्फटिक मणि ही है। तो स्फटिक मणि अनेक प्रकार के होते हैं, समझ गया ना? तब स्फटिक मणि अनेक प्रकार के होते हैं तो जो कुछ मणि ऐसे होंगे जो आजकल मिलते हैं, यदि वो डांक लगाने का वैसा असर नहीं दिखता, ये भी स्फटिक होगा, लेकिन वो उतनी उच्च क्वालिटी का जिसमें वो बातें होती हैं। उदाहरण के लिए तो आचार्य काय को कंजूसी करें, वे तो बिल्कुल उत्कृष्ट कोटि का मणि लेंगे ना, समझ में आया ना? तो अब आपके समझ में एक समस्या हल हुई ना, कि इसमें एक क्या प्रश्न खड़ा हुआ था, उसका क्या उत्तर है, और वो कहां से खोज निकाला है, वो सोर्स वगैरह मैंने सब इस किताब में लिख दिया है। कि अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया है, जो इसमें से मैंने रिसर्च की उसको आपको दो पैराग्राफ में लिख दिया है। कभी कभी मैं बहुत सोचता हूं कि वो जो प्रोफेसर की लिखी कुंजियां हैं जो बाजार में मिलती हैं और लोग कहते हैं जैसा क्लास में वे हूबहू पढ़ाते हैं वैसा ही हूबहू कुंजी में लिखा है, और जो 5 रुपए में आती है, और प्रोफेसर साहब को 50,000 या 2 लाख रुपए महीना देना पड़ता है, क्यों? तो फिर हम उस कुंजी से ही काम क्यों नहीं चला रहे? हम प्रोफेसर साहब से पढ़े ही क्यों? अरे पढ़ने से पैसा थोड़ी बचेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो, यानी उन्हें हम नौकरी पर रखे ही क्यों? सबको कुंजियां बांट दें। लेकिन अब ये समय सार अनुशीलन इतना विस्तार से लिख देने के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आता है और उसे समझाना पड़ता है, तो उससे मेरी समझ में आ रहा है कि अकेले लिखने से काम नहीं पड़ेगा, उस पर प्रवचन करके समझाना भी पड़ेगा। इतना बहुत बहुत इतना विस्तार से नहीं लिखा जा सकता भाई साहब, लिखने में बहुत मर्यादा है। तो आपको यदि समय सार समझना है तो ये समय सार अनुशीलन पढ़ने भी पड़ेंगे, और ये मेरे प्रवचन ये महाभाग्य से आजकल ये वीडियो के रूप में भी सुरक्षित हो गए, ऑडियो के रूप में भी सुरक्षित हैं, तो उन्हें सुनना भी पड़ेगा। देखो अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा, दोनों करना पड़ेंगे। क्यों? अरे दोनों नहीं, एक तीसरा और है। क्या है तीसरा? पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझ रहे? माने तुमको वो ऑडियो सुनने पड़ेंगे जब गाड़ी में तुम जा रहे हो बबलू, और घर पे बैठ के समय पे निकाल के टीवी पे लगाकर ये प्रवचन करते हुए सुनना पड़ेंगे, तब वो भाव तुम्हारी समझ में आ जाए तो अपना महाभाग्य समझना। तो उसके बाद भी नहीं आए तो नहीं आए, क्योंकि उपयोग इस तरह नहीं होता है। हम सुनते रहते हैं, यहां वहां देखते रहते हैं, हम वो देखते भी रहते हैं, यहां वहां उपयोग भटकता रहता है, पढ़ते भी रहते हैं पर वहां उपयोग भटकता रहता है, कुछ बात नहीं पड़ती। और यदि ऐसा जब करने लगोगे तुम, तो तुम्हारी भी हालत हम जैसी ही हो जाएगी। क्या एक 80 वर्ष का बुढ़ा था बेचारा, तो पुराने जमाने में बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाती थी, देखी आपने, ऐसे लाठी लेके चलता था। अब आजकल जमाने में सब बदल गया, तो जरा ऐसे बने रहते हैं हम, अंदर से तो खोखले सब हो ही जाते हैं, लेकिन ऊपर से दिखते हैं अप टू डेट एकदम। और जब नहा धो के ढंग से क्रीम पाउडर लपेट के टोपी वोपी लगा के आते हैं, तो एकदम ऐसा दिखते हैं कि एकदम एबन, कुछ है नहीं, अंदर से तो सब खोखले हो ही जाते हैं। अब वे बुढ़े अंदर से भी हो जाते थे और बाहर से भी दिखते थे, अंदर से थोड़े हमसे मजबूत रहते थे। तो एक कॉलेजी लड़के को मजाक समझा और उसने कहा, ए दादाजी, ये धनुष्मान कितने में खरीदा? धनुष्मान समझ में आया कि नहीं आया? वो लकड़ी है, वो डोरा, और धनुष वो झुकी हुई कमर। क्या क्या कहा? कि ये धनुष्मान कितने में खरीदा? तो उसने ऊपर गर्दन उठाई और कहा, बेटा हो सकता है कि तुम हमारी उम्र में आओ या नहीं आओ, शायद नहीं भी आ पाओ। यदि भाग्य से आ गए तो ये धनुष बाण मुफ्त में ही मिल जाएगा। भाव क्यों पूछते हो? है ना? तो इसलिए हम कह रहे कि आप ऐसे लिखोगे, ऐसे पढ़ोगे। वीर सागर ने रात को बहुत आपको विस्तार से बताया कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसी मान मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, कैसी देवसाद गुरु की महिमा आना चाहिए, कि तब जाके हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि बहुत विस्तार से विधि पूर्वक उनने आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिए है? क्या वो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, और मैं उसमें इतना जोड़ रहा हूं कि इसे अंदर इसको समझना है तो बाहर का सब कुछ भूलना पड़ेगा। जब सब कुछ देखते हुए भी कुछ दिखाई ना दे, और जब बाहर का सब कुछ सुनता हुए भी कुछ सुनाई ना दे, क्यों, तो समझ लेना कि अब तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक हो रहे हैं। लोग तो बुढ़ापे का चिन्ह मानते हैं। मैंने बताया कहते 3 दफे तो तुमसे कही थी और तुम कहते हो हमसे कही नहीं, अब क्या करें, किसकी गवाही सफाई ना है। रोजाना क्या लग रहा है? ऑफिस में भी, घर में भी, वो पीयूष भी यही कहता है, दादा मैंने तो आपको कह दी थी। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं मानता, अब मेरे साइन करा लिया करिए, वो दिखाना मेरे को कि तुमने मेरी से कह दी थी, हमने आपको बता दिया था सब जगह। तो ये जो लाठी है ना आपको, ये धनुष बाण है, ये जब तुम्हें प्राप्त होगा तो ये समय सार समझ में आएगा। समझ लो, समय सार समझने की ये जो 7-8 वेद इसने बताए थे ना, वे उभयाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, कालाचार, उसमें जी एक आचार और जोड़ लेना। ठीक है जी सर, आ जाएगा, चलो कहीं ना कहीं आ गया है, बढ़िया बात है। देखो है ना, जो भी हो, अब हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें निकालो, अपन जहां छोड़ा था वहां से, जो भी हो, हम तो यहां इस छंद में जो बात कही गई है उसी के अनुसार अर्थ करते हैं, चाहे वो स्फटिक मणि हो, चाहे वो सूर्यकांत मणि हो। तुम कहो तुमने कैसे अर्थ किया, अब हम क्या करें, समझे ना? क्योंकि जो तोमद हम बनासी दास पे लगाते हैं तो हम पे भी लग सकती है ना, हम वैसे ही अर्थ कर रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार उज्जवल निर्मल सूर्यकांत मणि रूप स्फटिक मणि में, देखो अब ये लाइन कितना सोच के लिखी गई है अवैधी, अब नहीं बताएं तो आपको कैसे पता चले? क्या क्या समझे ना, क्या लगा? सूर्यकांत मणि रूप स्फटिक मणि में, माने ऐसे भी स्फटिक मणि होते हैं जो सूर्यकांत मणि रूप नहीं है, माने वो चंद्रकांत मणि रूप हो और भी रूप हो, माने स्फटिक मणि व्यापक है और सूर्यकांत मणि व्याप्त है। ख्याल में आ गया ना? मैं अनेक प्रकार के रंगों से युक्त डाक लगा देने पर वह अनेक रंगों वाला दिखाई देने लगता है, किंतु जब उसके वस्तु स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं। अब सुनो, ये कला बहुत विचित्र है कि सब स्फटिक मणि हटा दो तो सब वो दिख जाएगा, कहने में डाके हटा दो तो निर्मल दिख जाएगा। कहते भैया ये स्फटिक मणि में तो डाके हटा देंगे लेकिन हर जगह से नहीं हटाई जा सकती। जैसे कि सफेद कपड़े को लाल रंग में हमने रंग दिया, अब हम कहेंगे लाल रंग को बाद करके और तुम इस कपड़ा को देखो तो ये तुम्हें सफेद दिखाई देगा, तो हटा दो तो हम देख लेते हैं, हट नहीं सकता। समझ में आएगी नहीं? स्फटिक मणि में तो हम हटा देंगे लेकिन हर जगह से नहीं हटा पाएंगे। फिर दाल में जो नमक डल गया है ना और मिर्ची, अब वो हम नहीं हटा पाएंगे, वो दाल में मिला रहे नमक और मिर्ची, और फिर भी तुम मिर्ची को अलग पहचान लो और नमक को अलग पहचान लो और दाल को अलग पहचान लो तो तुम्हारा काम होगा। तुम्हें अपनी दृष्टि में ये कमाल पैदा करना पड़ेगा बेटा। क्यों? कि जो हम उदाहरण दे रहे अभी, ये कर्म के उदय का निमित्त पाकर आत्मा राग द्वेष रूप हुआ है, अप्रकरण वो है असली। यदि इसको बाद करके दृष्टि में देखो तो भगवान आत्मा एकदम निर्मल है, कि हटा दो तो हम देख लेंगे सिद्ध भगवान को, कि भैया अभी हटाए नहीं सकते, सिद्ध भगवान के देखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम अपने भगवान आत्मा में देखोगे तो काम चलेगा। ये राग द्वेष मैं रूप से परिणमित होता रहेगा, उसी काल में तुम्हें निर्मल देखने की दृष्टि माने निश्चय नहीं की दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई? कि जब हट जाएगा तो हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर जगह स्फटिक मणि की बात नहीं आएगी। स्फटिक मणि का उदाहरण तो दिया ही हमने इसलिए है कि हम तीन दफे निकाल के दिखा सकते हैं, तीन दफे निकाल के लगा सकते हैं फिर दिखा सकते हैं। कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्फटिक मणि जो तुम्हें लाल दिख रहा है ये वास्तव में लाल नहीं है। कैसे नहीं है? साफ तो दिख रहा है। एक मिनट अब देखो निकाल के, बिल्कुल साफ है, अब देखो, देख ले लगा के, ये तो लाल है, ये तो लाल है, अब देखो। अब तीन दफे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, अब ऐसा भगवान आत्मा में नहीं कर सकते हम एक मिनट में, कि तुम कहें एक मिनट में डाक लगा दें, एक डमक में डाक निकाल दें, ये कर्म हमें दिखते ही नहीं है जो निमित्त हैं। समझ में आया ना? तो तुम्हें इससे बात समझनी पड़ेगी और फिर ऐसी दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। ख्याल में आई? जिस वक्त मां बेटे को बहुत जोर से चांटा मार रही है, ख्याल में आई ना, और एकदम गालियां बक रही है और नालायक घर से निकल जा, उसी समय उसके अंदर अनंत अगाध स्नेह उस बच्चे के प्रति अंदर में बह रहा है। उस बच्चे को वो देखना पड़ेगा उस वक्त, नहीं तो घर छोड़ के भागना पड़ेगा बेटा, दो में से एक समझ लो। बहुत बच्चे नहीं देख पाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों ऐसा होना क्या नहीं है? उसी समय इतनी जोर की पटाई करी, देखो तो मेरा लाल लाल गाल हो गया, वो ऐसी गालियां बकी, मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखूं, वो समझती क्या है अपने को है? अरे वो क्या समझती है अपने को, तू क्या समझता है उसे बता। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? अरे तेरे को बचाया है उसने, इससे कई गुनी पटाई से तेरे को बचाया है,
بتایا ہے کہ مارا ہے؟
بولو بولو. اس ماں نے بیٹے کو بتایا ہے کہ مارا ہے؟ اس نے دوسرے کے بیٹے کو دھکا دے دیا تھا, اس کا ماتھا پھٹ گیا تھا, خون کی دھارا بہ نکلی تھی, اسے اسپتال لے گئے تھے, سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ان نے اسے لڑکے کو پکڑ لیا تھا اور دھنائی شروع کرنے ہی والے تھے. اس وقت اس کی ماں کی طاقت نہیں تھی کہ ان 100 مہلاؤں سے وہ جوجھ کر اپنے بیٹے کو بچا لیتی. یعنی وہ ایسا کرتی تو بیٹا بھی پٹتا اور ماں بھی پٹتی. کیا تو اس نے ان لوگوں کے بیچ میں گھس کر جان کی بازی لگا کر اور اپنے بیٹوں کو ان سے چھڑا کر دھنائی شروع کر دی. تو کیا سمجھ تو نے ایسا گھر پہ نکال دوں گی, آئے نہیں آنا. اور اس کے کہتے سب ڈنگ کہتے ماں ہی پیٹ رہی تو ہمیں کیا کرنا. بڑا پڑھاتی رہی, گالیاں دیتی رہی, چانٹا دھرتی رہی, تو ایک ایک کر کے سب چھٹ رہی تھی. کیوں 10 ماں چلا گئی تو پکڑ کے ہاتھ کھینچتے ہوئے کھچوڑ کے اپنے گھر لے گئی اور کمرے میں بند کر دیا, تالا لگا دیا اور چاری اپنے بہادر میں, اب تو میرے کو درگش کے باہر نکلنا نہیں دوں گی, تجھے منہ کو مرنا. کیوں؟ کیونکہ بہت سی مہلائیں وہاں تک بھی آ گئی تھی. وہ گھر کے کمرے میں بند نہیں کرتی, تالا لگا کے چابی اپنے کو نہیں دکان چھپا کے نہیں رکھتی, تو وہ وہاں جا کے پیٹتی. اس میں سے کوئی ایک آدھ دیالو مہیلا تھی, ارے کب تک مارے گی, اسے جان کھائے گی کیا؟ کہنے لگی اما جی تم بیچ میں مت بولو, نہیں میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا, میں نہیں چھوڑوں گی اسے, جاؤ آپ اپنے گھر. کیوں بولا؟ سب چلے گئے, دھیرے سے تالا کھولا اور کہا دیکھ میرے اچھی پٹائی کی میں نے, اپنے چائے پی لے گرم گرم ہلدی کا دودھ. اسے کیوں کیا کیا ڈالنا پڑتا ماتا میں نے جانتی ہے چور سے بچانے کے لیے, اور وہ دودھ پلاتی ہے, مناتی ہے, بچاتی ہے. کیوں اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں نے تجھے کیوں پوٹا کیا پیٹا؟ کیوں وہ بیٹا کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا ہے, اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ماں جو کچھ کر رہی ہے وہ میرے ہت کے لیے ہی کر رہی ہوگی. یعنی اتنا بھروسہ نہیں چلے رہ کے چلے گا تو وہ کبھی ماں بیٹے نہیں رہ سکتے. سمجھ گئے نا؟ اندر سمجھ میں آئے نا؟ وہ اسے بچانے کا تیرے کو وہ دشٹی چاہیے کہ ماں کے اس اگر روپ میں سے اندر کا جو اسنے ہے وہ دیکھنے کی طاقت تیرے کو چاہیے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے ہی اوپر سے راگ دیش سے میلے, متھات دشا سے میلے کچلے, کرودھ میں آگ اگلتے, کیوں بھائی پہ چکر چلاتے, بندوق لے کے بھائی کی چھاتی پہ رکھ کر, ایسے میں بھی وہ ترکالی دھرو بھگوان آتما نہ راج روپ ہوا ہے, نہ گرودھ روپ ہوا ہے, نہ مان روپ ہوا ہے, نہ مایا روپ ہوا ہے, وہ تو ایک دم اسفٹک منی جیسا اتنت نرمل ہے. بیتراگی نہیں کہنا چاہتا میں. کیوں کہ بیتراگی کہنے میں اس نالائک نام کا راگ کا نام آ جاتا ہے اس میں. کہ نشید روپ سے صحیح, لیکن اس کا تو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بیتراگی کہیں گے تو راگ کا نام تو آ گیا نا, یہ نام لینے لائق نہیں ہے. سمجھ گیا نا؟ ایسا جو بھگوان آتما ہے یہ اس کی بات ہے. اب بھیا اپنے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں جی ارتھ جو میں نے لکھا ہے نیچے. اب یہ ارتھ ہے اس کا چند کا, جس پرکار اجول نرمل سورکانت منی روپ اسفٹک منی میں انیک پرکار کے رنگوں سے یکت ڈانک لگا دینے پر وہ انیک رنگوں والا دکھائی دینے لگتا ہے, کنتو جب اس کے وستو سوبھاؤ کے سمیپ جا کر دیکھتے ہیں تو وہ اجول ہی بھاست ہوتا ہے उसी प्रकार इस आत्मा में पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से अनेक प्रकार के मोह ममता के भाव उदित दिखाई देते हैं, किंतु जब भेद ज्ञान की दृष्टि से स्वभाव की साधना की जाती है तो अंतर में सच्ची शुद्ध चेतना ही दिखाई देती है और अनर्वचनीय सुख शांति का अनुभव होता है। देव छंद का, अब ये छंद का अर्थ है कि नहीं है ये देखना है तो पढ़ो बेटा एक बार और अच्छी तरह से गा करके।
जैसे नाना भरण पूरी बनाए दीजे उज्जल विमल मनी सूरज क्रांति है, उज्जलता भासे जब वस्तु को स्विचार की पूरी की झलक सोबरन भांति भांति है। तैसे जीव दरव को फुगल निमित रूप ताकि ममता सोमो मंदिरा की भांति है। भेद ज्ञान दृष्टि सो स्वभाव साधि लीजेता साची शुद्ध चेतना आवाची सुख शांति है।
साची शुद्ध चेतना अवाची शुद्ध सुख शांति है। क्या है जी अवाची सुख शांति क्या है भैया? अवाची माने वाणी में नहीं आता है ऐसा सुख और ऐसी शांति, समझे ना? आकुलता ऐसी निराकुलता, ऐसा सुख माने ऐसी निराकुलता और ऐसी शांति माने कसाय अकसाय भाव। शांति है 25 कषायों के अभाव का नाम और अनाकुलता है सच्चे सुख का नाम, आत्मिक सुख का नाम। देखो सांची सांची शुद्ध चेतना और अबाची सुख शांति है। क्यों विचार समझना? तेरा ये देते हैं तेरा लिखा ना जो अनुवाद वो हमारे विद्यार्थी जो हमारी उसमें देते हैं है ना विद्या विज्ञान के पहले पेज पे, तो मैं उसको देखता हूं तो कहीं कहीं मैं थोड़ा बहुत बदल देता हूं, तो तू देखा करे उसे और अपने लिखे अर्थ पर भी विचार किया करे, ख्याल में आए ना? और फिर उसके बारे में कुछ मेरे से पूछना हो तो फोन पर पूछ लिया करे। चलो अब दूसरा छंद पढ़ो।
इससे मही मंडल में नदी को प्रवाह एक ताही में अनेक भांति नीर की धरनी है, पाथर को जोर ताहा धार की मरूर हो काकर की खानी ताहा जाग की धरनी है, पौन की चकोर ताहा चंचल तरंग उठे भूमि की निचानी ता गौर की परनी है। तैसे एक आत्मा अनंत रस पुद्गल दुहु के संयोग में विभाव की भरनी है।
ये बनारसीदास का कमाल है, प्योर उनका ओरिजिनल है, क्योंकि पिछले छंद में तो वो स्फटिक मणि का उदाहरण उस छंद में था मूल में, सूर्यकांत मणि का है ना। ये किस छंद पे चल रहे हैं देखो निकालो, न जातु रागा दिन मित्र भावात इस पे था, अर्थात मनो याति यथार के कांता तस्मिन निमित्तम पर संगे वे। ये इस छंद में अर्क कांता है ना, ये इसमें तो वो था उदाहरण, अब उसको उन्होंने अच्छा रंग रंग से भरा है, समझे ना? मूल उदाहरण था लेकिन ये दूसरा उदाहरण उन्होंने खुद दिया है क्या, और उसमें कलर भरा है। पढ़ते हैं उसका अर्थ अपन। जैसे मही मंडल में ये सारी पृथ्वी पर नदी को प्रवाह एक, नदी बहती है तो उसका प्रवाह गंगा का प्रवाह गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक है, कहीं अटूट धारा है ना, तो प्रवाह तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो गंगोत्री से निकला वो बंगाल की खाड़ी तक गया, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्वभाव तो एक ही है और उसका नाम क्या है? प्रवाही,
प्रवाही स्वभाव है।
बहना, नदी किसे कहते हैं? पानी के समूह को। पानी का समूह तालाब होगा, झील होगी, बांध होगा, नदी नहीं है। नदी बहते हुए पानी का नाम है, सूखी का नाम नदी नहीं है। बार बार जगह जगह खंडित हो गई, उसका नाम नदी नहीं है। इसलिए गंगा का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि बाकी नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं। गंगा नदी 12 मास सूखती नहीं है, एक सी बहती रहती है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो और जरा तेज धार हो जाती है, क्योंकि बर्फ ज्यादा पिघलती है तो ज्यादा पानी उसमें आता है। जब सारा पानी तप के आग हो जाता है तो गंगा का पानी ठंडा होता है, क्योंकि बर्फ पिघल के आया है, है ना? तो महादेव जो इतने बड़े होते हैं ना बर्फ के, वो धीरे धीरे पिघल के साफ हो जाते। रोजाना अखबारों में आता है 7 फुट के महादेव 8 फुट के रह गए और प्रतिक्षण और गलते जाते हैं ना। इसलिए गंगा नदी का उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि शीतल होता है उसका पानी, निर्मल होता है उसका पानी, समझे ना? इसलिए 12 मासी होता है, अखंड रूप से प्रवाह होता है। तो अपनी जनवाणी माता को भी गंगा की उपमा दिया। जनवाणी जमुना कोई नहीं कहता कि जनवाणी चंबल तुझे लाखों परनाम, कोई नहीं कहता। क्यों कहते? क्योंकि वो निर्मल है। भगवान तीर्थंकर के मुख से निकली थी वीर हिमाचल ते निकसी, और आज तक अखंड रूप से बह रही है, कभी सूखी नहीं है। भयंकर गर्मी से गर्मी पड़ रही हो तो भी वो बहती रहती है, समझे ना? और जैसे वो गंगा का पानी नगर के किनारे पे बसने वालों को ठंडक प्रदान करता है, निर्मल जल प्रदान करता है, ऐसी ये जनवाणी गंगा वीर हिमाचल ते निकसी भी मुखमोक्तम के गुण कुंड करी है। और वो है महाचल जग की जड़ता, ये क्या है? ये क्या है? कुछ समझ में आया? ये जग की जड़ता माने मूर्खता, रूपी आतप माने गर्मी। जड़ता प्लस आतप, ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि के सवर्ण संधि। अरे कल समझाया था मैंने टीवी पर कि दीर्घ संधि और सवर्ण संधि में क्या अंतर है, मालूम है? किसी को मालूम है? हाथ उठाओ, कौन को मालूम है? मेरे विद्यार्थी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे अध्यापक नहीं उठा सकते। ये अध्यापक कुल बुला रहे हैं, इसलिए मैंने मना किया। क्यों? आज ही कराया था। बता, क्या बताना चाहता? बोल। काय का अर्थ पूछ रहा हूं मैं? जड़ता तप, इसमें जो दीर्घ संधि है के सवर्ण संधि है। अभी तेरे को बेटा प्रश्न ही पता नहीं चला, ये मेरी उम्र का मेरा बेटा है क्या समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? एक कल लड़कियों ने कमाल कर दिया, फर्स्ट क्लास लड़की ही लड़कियां आई। मुझे लगा कि लड़कों का विद्यालय बंद करके लड़कियों का शुरू कर देना चाहिए। एक लड़की तो उनमें वो थी कि जिसे मैंने यहां रहने को जगह नहीं दी, टॉप किया। अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ करूं क्या? काय का अर्थ पूछ रहा हूं, क्या प्रश्न है? जड़ता तप में कौन सी संधि है? तो कातंत्र रूप माला के हिसाब से सवर्ण संधि है, और पाणिनि के हिसाब से दीर्घ संधि है। अब याद आया कुछ? अकह सवर्णे दीर्घा, तो जड़ता में आ बड़ा और आतप का आ, और दोनों मिलके हो गए दीर्घ, जड़ता तप। और कातंत्र रूप माला से समाना सवर्ण दीर्घा भवती परश्च लोपः, ये सूत्र है। दो जब समान वर्ण आ जाते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं और अगले वाले अक्षर का लोप हो जाता है। बताया था दो तीन दिन के भीतर भीतर आया था। मैं भी सुनता हूं रोजीना, अपना प्रवचन सुनता हूं, बहुत मजा आता है कि अपने में तो हमें भी मजा आता है, दूसरे के में नहीं आता है। क्यों? अब याद आया कुछ? अब मैं एक प्रश्न और पूछता हूं वैसे। हाँ, हालांकि मैं जानता हूं घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, मुझे इस छंद का अर्थ बताना है। देखो आम आ छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, ठीक है? पहला छोटा दूसरा बड़ा मिलके भी बड़ा होता है, पहला बड़ा दूसरा छोटा मिलके भी बड़ा हो, और दोनों बड़ा आहो तो भी बड़ा होता है। अब ये चार उदाहरण बताओ। समझ गए ना कि जहां दो छोटे आ मिलके बड़ा हुआ हो, जहां पहला बड़ा और दूसरा छोटा आ मिलकर के बड़ा हुआ हो, जहां पहला बड़ा और दूसरा छोटा आ मिलके बड़ा हुआ हो, जहां दोनों बड़े आ मिलकर के बड़ा हुआ हो। देखो विद्यालय, विद्यालय हो गया, भोजन आलय, भोजनालय हो गया, खोजना मिलेंगे, इसमें ही मिलेंगे। समझ में आई ना? अब ये लोग आएंगे साहब हमारी समझ में तो नहीं आया, तो पांच वर्ष विद्यालय में पढ़ो तो तुम्हारी समझ में आएगा, हम क्या करें? क्यों? चलो जिया जय जय मही मंडल में नदी को प्रवाह एक, ताही में अनेक भांति नीर की धरन है। ये तो समझ में आया ना कि नदी का प्रवाह एक है और लेकिन उसमें पानी की जो धरनी है वो पानी नीचे को जब ढलता है ना उसमें अनेक भेद हैं। अब प्रवाह एक है, देखो एक में अनेक कैसे होता है और अनेक में एक कैसे होता है, गजब की बात है बनारसी दास की है? अब फिर पढ़ता हूं ये पहली पंक्ति, ध्यान से सुनना। जैसे मही मंडल में नदी को प्रवाह एक, ताही में अनेक भांति नीर की धरन है। अब क्या है अनेक भांति? पाथर को जोर तहां धार की मरोर होत। ये क्या है? सामने पत्थर आ गया, पत्थर आ गया, एकदम पानी बहता जा रहा था तेजी से, वो पहाड़ी आ गई तो क्या करती है? उसमें टक्कर मारती है और फिर पानी को ऐसा मुड़के और ऐसा जाना पड़ता है, वो टक्कर मारता रहता है, टक्कर मारता रहता है, सारा पहाड़ कट जाता है, लेकिन बरसों लग जाते हैं, लेकिन पानी को मुड़ना पड़ता है टक्कर मार के भी। जो टक्कर मार के मुड़ना सीखे बबलू वो सही नीति है, कोई टक्कर ही टक्कर मारता रहे किसी काम का नहीं, वो मुड़ना ही मुड़ना सीखे वो किसी काम का नहीं। देखो पाथर को जोर तहां धार की मरोर होत, थाय में वो प्रवाह में, क्या लक्ष्मी समझ में आता है कुछ? पाथर को जोर समझ में आ रही ना, तहां धार की मरोर होत, चित्र बना सकता हूं मैं, नदी दौड़ती आ रही है, ऐसा पहाड़ आ गया था दरी में ऐसे मुड़के गई, समझ में आया ना? पाथर को जोर तहां धार की मरोर होत, और कांकर की खान तहां झाग की झरन है। अब आविष्कार तो बता सकते हो ना? कहते जहां कंकड़ पत्थर आ गए नीचे नीचे तो उसी पानी में झाग उठने लगता है, जैसे दूध में उठने लगता है ना, कांकर की खान वो नीचे है, कंकड़ पत्थर है सामना नहीं टकराया है, एक कंकड़ पत्थर है तो झाग की झरन है, उस पानी में झाग उठने लगता है, और पौन को झकोर जहां हवा तेजी से आती है तहां चंचले तरंग उठे, उसमें ऐसी तरंग उठने लगती है। दादा ने वो लिखा था क्या बनारसी दास ने लिखा था ना, तो मैंने दादा से कहा था कि दादा इसका अर्थ आपने जो लिखा है एक दफे द्वारा देखकर जो मैंने इन छंदों का अर्थ किया है जहां जहां वो छंद हैं, उन छंदों का अर्थ मेरे हिसाब से लिख दो उसमें। पता नहीं दादा ने किया कि नहीं किया, क्योंकि अब दादा को नहीं समझा इसमें क्या है। ये पंडित हुकुमचंद अपना नाम लिखाना है दादा, लेकिन नाम मत लिखो, तुम्हें लिख दो अपनी तरफ से, वो पुराना अर्थ मत लिखो। लेकिन समझ में नहीं आयोगी, अब शायद सोचें, समझ में आए ना, आपकी समझ आ गई ना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, कांकर की खान तहां झाग की झरन है, पौन को झकोर तहां चंचल तरंग उठे। मैं इसमें माथा मारता रहता हूं, हंसता रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं, समझ में ना, मेरी तबीयत ठीक रहती है। और भूमि की निचान तहां भौर की परन है। अब बताओ इसका, अब तो बहुत सरल हो गई ना, अब एकदम नीची भूमि आ जाती है, पानी ऊपर आता ना, जैसे कि नागरा फाल है ना, एकदम वो नदी बहती आती है और एकदम हजार फुट नीचे है? तो एकदम नदी गिरती है, तुम तो देखा है ना, यहां भी बहुत होंगे ऐसे नहीं है हिंदुस्तान में। देखो, भूमि की निचान, यहां जमीन नीची आ गई तो हम भौर की परन है, तो उसमें ऐसे ऐसे भौर पड़ जाते हैं और गोल 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 आदमी अंदर चला जाता है ना, भौर समझ गए ना, ऐसा 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 हो जाता है ना अंदर। यदि वहां नहीं देख पाओ ना तो लेटरिन जाकर के फ्लश चलाओ ना, उसमें भी ऐसे ही सेट किया जाता है कि वो पानी में ऐसे ऐसे घूमता है, जब वो महान नगवा पार होता है, भौर की परन निचान है ना, नीची जगह, समझ गया ना, और मुझे वो दिखता है रोजे ना, इस चंद का अर्थ हुआ। भूमि की निचान तहां भौर की परन है, तैसे एक आत्मा अनंत रस पुदगल। आत्मा तो एक है और पुदगल के उदय का अनंत प्रकार के रस हैं, जैसे प्रवाह तो एक है और उसमें से भौर पड़ती है, धाक झरता है, मरोर पड़ती है, ये समझिए ना, प्रवाह में ऐसे पर्यायों में राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। देखो, तैसे एक आत्मा अनंत रस पुद्गल, एक अनंत रस पुद्गल क्या है, कर्म के उदय रूप रस, अनुभाग रस का उदय, समझ में आया ना, ये करुणा नियोग भी आ गया। दुहू के संयोग में विभाव की भरन है, इस आत्मा और कर्म का उदय का संयोग होता है तो अनेक प्रकार के मोह राग द्वेष के विभाव होते हैं, वो स्वभाव नहीं है। अरे एक बार पढ़ के सुना दे बेटा, फिर अपन खत्म करते हैं, हो गया समय।
जैसे मही मंडल में नदी को प्रवाह एक, ताही में अनेक भांति नीर की धरनी है, पाथर को जोर ताहा धार की मरोर हो, काकर की खानी ताहा झाग की झरनी है, पौने की झकोर ताहा चंचल तरंग उठ, भूमि की निशानी ताहा भौर की परनी है, तैसे एक आत्मा अनंत रस पुद्गल, दुहू के संयोग में विभाव की भरनी है।
बाकी कल